नमस्कार, द प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आपको सुना रहा हूं इस हफ्ते का नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें शेखर गुप्ता कहते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 6 राज्य तय करेंगे कि बीजेपी अब की बार 400 पार करेगी या विपक्ष उसे 272 का आंकड़ा भी नहीं छूने देगा। ये चुनाव कितना कांटे की टक्कर वाला होने जा रहा है? अगर आप मोदी भाजपा के समर्थक हैं तो इस सवाल पर आपका जवाब ये होगा कि अब तक ऐसा कोई चुनाव हुआ ही नहीं जिसका नतीजा पहले से मालूम रहा हो, और यह कि एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है। लेकिन अगर आप विपक्ष के समर्थक हैं तो आप कहेंगे कि ये 2004 के चुनाव जैसा होने जा रहा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए की जीत पक्की मानी जा रही थी मगर उसकी हार हो गई। चुनाव के पहले चरण का मतदान होने के साथ माहौल दिलचस्प रूप से गर्म हो चला है। तमाम टीवी चैनलों पर ओपिनियन पोल के नतीजे आ रहे हैं, जिनके सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम, और सबके सभी एक ही नतीजा बता रहे हैं। वो ये है कि भाजपा को इस बार 2019 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। हाल के दिनों में सबसे सफल माने गए सर्वेक्षणकर्ता प्रदीप गुप्ता ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, या शायद उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की हो। हाँ, एक ट्वीट उन्होंने ज़रूर किया था और मनी कंट्रोल से कहा था कि एनडीए को 13 राज्यों में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये ट्वीट तुरंत हटा भी दिया गया। उन्होंने कोई दावा नहीं किया है कि उन्होंने कोई ओपिनियन पोल किया है। जब कोई चैंपियन सर्वेक्षणकर्ता दोनों पक्षों पर दाम लगा रहा हो, तब एक पत्रकार किसी चुनाव को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों पक्षों के दावे भी सही हों और गुप्ता ने हटा दिए गए अपने ट्वीट में जो कहा था वो भी सही हो? भारत में किसी भी चुनाव, चाहे वो मोदी के उत्कर्ष के बीच क्यों ना हुआ हो, उसका नतीजा विभिन्न राज्यों में हुए मुकाबलों के नतीजों से मिलकर ही बनता है। मैं कह चुका हूँ कि गठबंधनों के 25 साल 1989 से 2004 के दौर में भारत में हुए आम चुनाव 9 सेट वाले टेनिस मैच की तरह हुए। जो खिलाड़ी 5 सेट जीत जाता है वो ये चुनावी ग्रैंड स्लैम जीत ले जाता है। अब ये 9 सेट उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जो कि विभाजन से पहले था, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और केरल हैं। इनमें कुल 351 लोकसभा सीटों का फैसला होता है। जो पक्ष इनमें से 5 को जीतता है वो 200 सीटों के आंकड़े के करीब पहुंच जाता है, जो कि किसी गठबंधन के लिए 272 के बराबर था। ये गणित 2014 में ख़त्म हो गया। इस बार के चुनाव के लिए हम इस गणित को बदल रहे हैं और इन 6 राज्यों को इसमें गिन रहे हैं। वो राज्य हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, झारखंड और ओडिशा। 193 लोकसभा सीटों का फैसला करने वाले इन राज्यों में ज़बरदस्त टक्कर है। ये तय कर देंगे कि 4 जून को भाजपा को कुल कितनी सीटें मिलेंगी। अगर उसे 225 से ज़्यादा सीटें जीतनी हैं तो इन्हीं राज्यों को जीतना पड़ेगा। अगर हम 1977 में बनी सरकार को पहली गैर कांग्रेसी सरकार मानकर चलें तो उसके बाद से जन्मे मतदाताओं के लिए लोकसभा में बहुमत का विचार अनजाना ही होगा। इसलिए 2014 में मोदी की जीत को वे विपक्ष का सफाया मान सकते हैं। हालांकि मोदी 282 सीटों के साथ मामूली बहुमत ही पा सके थे। 1969 में कांग्रेस के ओल्ड गार्ड से अलग होने के बाद इंदिरा गांधी तब की लोकसभा में आमतौर पर 350 का आंकड़ा तो हासिल करती ही थी। इसलिए 2014 को अगर सफाया माना जाएगा तो 2019 को लैंडस्लाइड मानना पड़ेगा। 2019 में पुलवामा बालाकोट के कारण राष्ट्रवादी भावनाओं के उभार ने भाजपा की वोट प्रतिशत में बड़ा इजाफा तो किया, लेकिन कुल सीटों की संख्या मात्र 20 बढ़कर 303 पर पहुंची। आप पूछेंगे कि अब मैं मात्र शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूं? मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि भारत में लैंडस्लाइड पहले 350 सीटों के इर्द गिर्द माना जाता था। 303 सीटों का आंकड़ा कहता है कि किसी एक नेता की इतनी ज़बरदस्त लोकप्रियता और आकर्षण के बावजूद भारत का चुनाव राज्य दर राज्य लड़ा जा रहा है। मोदी ने 12 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की 320 में से 278 सीटें जीतकर लगभग सफाया कर दिया, लेकिन बाकी राज्यों में बड़ी जद्दोजहद के बावजूद कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 25 सीटें ही जीत पाए। उनकी पार्टी ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वहां के अग्रणी दलों से बहुत पीछे रहे। इन 12 राज्यों में उसने जिन अप्रत्याशित अंतरों से दूसरे पक्ष का सफाया किया उसके कारण उस जीत को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इस मामले में हमारे रिपोर्टर अमोघ रोहमेत्रा की एक रिपोर्ट है जो कि काबिले गौर है। यह रिपोर्ट बताती है कि भाजपा ने 224 सीटों पर 50% से ज़्यादा वोट हासिल किए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में 50% वोट के आंकड़े को होली ग्रेल के समान माना जाता है। इसे हम और अच्छी तरह से तब समझ सकते हैं जब ये याद करें कि राजीव गांधी रिकॉर्ड 414 सीटें जीतने के बावजूद 48.12% वोट ही हासिल कर पाए थे। तो अब इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं, एक ये कि इन 224 सीटों में भाजपा के वर्चस्व वाले 12 राज्यों की जो सीटें हैं उनमें से अधिकतर पर 2024 के दूसरे दावेदारों को कहीं ज़्यादा तीखे मुकाबले का सामना करना पड़ेगा, बावजूद इसके कि विपक्ष ने गठबंधन किए हैं, कुछ जातियां नाराज हैं और पुलवामा जैसा कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है। हरियाणा का ही उदाहरण लीजिए जहां भाजपा के लिए कई प्रतिकूलताएं हैं, केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश है। लेकिन याद कीजिए कि 2019 में भाजपा को वहां 58.21% वोट मिले थे। विपक्ष में चाहे जितना भी जोश भराया हो उसके लिए चुनौती कड़ी है। अब दूसरा निष्कर्ष यह निकलता है कि यही आंकड़े यह तो बताते हैं कि भाजपा ने इन 224 सीटों को एक झटके में जीत लिया, मगर देश के बाकी हिस्सों में यानी बाकी की 319 सीटों में से वो केवल 79 सीटें ही जीत पाई। बेशक उसने इन सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, लेकिन मैं 224 सीटें छोड़कर बाकी सीटों की बात कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि बाकी सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट या जीतने की दर लगभग 1/4 है। तो अगर आप भाजपा समर्थक हैं तो इसी को आधार बनाकर चलिए और बेशक मानकर चलिए कि ये 224 सीटें फिर इस बार बीजेपी जीत लेगी। फिर हिसाब लगाइए कि आप 370 के आंकड़े तक कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए भाजपा को बाकी की 319 सीटों में से करीब आधी सीटें जीतनी पड़ेंगी। असल लड़ाई यहीं पर है। एक पक्ष अधिकांश भारत पर हावी दिखता है, मगर बाकी जगहों पर उसके लिए मुकाबला तगड़ा है। नरेंद्र मोदी को अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पहला लक्ष्य 303 के आंकड़े को फिर पार करना होगा। यह हमें 6 प्रमुख राज्यों पर नज़र रखने के विचार पर वापस लाता है। यह 6 राज्य कुल 193 लोकसभा सीटों का फैसला करते हैं। इनमें से 4 राज्य कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड उन 12 राज्यों में शामिल थे जिनमें मोदी ने 2019 में विपक्ष का सफाया कर दिया था। अब इन 4 राज्यों में मोदी के लिए नई राजनीतिक चुनौतियां उभर आई हैं। बाकी के 2 राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा उन्हें पहले ही तरह तरह से चुनौती दे चुके हैं। इसके अलावा 100 और सीटें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में ऐसी हैं जो भाजपा की पहुंच से दूर ही हैं। 303 का आंकड़ा पार करने के लिए उसे इन 6 राज्यों में और करीब 100 सीटें जीतनी पड़ेंगी। हम बता दें कि हमने 2 वजहों से इन 6 राज्यों को चुना है। एक तो यह कि इनमें भाजपा अपनी ताकत रखती है, दूसरी वजह यह है कि इनमें से हर एक राज्य में मोदी का सामना अलग अलग वास्तविकता से है। महाराष्ट्र और बिहार में उसके अग्रणी सहयोगी काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके हैं। शिवसेना टूट चुकी है, JDU अपने विचारधारा मुक्त और निस्तेज नेता के कारण बेदम नज़र आ रही है। मोदी के लिए दोहरी चुनौती यह है कि वे अपने नाम पर इन सभी के लिए वोट भी जुटाएं। झारखंड और कर्नाटक में सरकार उनके विरोधियों की है, इसके कारण संतुलन थोड़ा गड़बड़ होता है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 2019 की तरह फिक्स नहीं तो दोस्ताना मैच नहीं होने जा रहा है, जब विधानसभा देकर लोकसभा का सौदा किया गया था। नवीन पटनायक की चिंता ये होगी कि अगर वे कमज़ोर पड़े तो उन्हें अपना बुढ़ापा राजनीतिक पतन में गुजारना पड़ सकता है, और अगर खुद को नहीं तो अपनी मंडली को एजेंसियों से बचाना पड़ सकता है। इन तमाम वजहों से हम ये कह सकते हैं कि इस बार हमारे राजनीतिक भूगोल के बड़े हिस्से में मुकाबले का नतीजा भले साफ नज़र आ रहा हो, मगर कुछ हिस्से में ये मुकाबला 2019 के मुकाबले से भी ज़्यादा पेचीदा है। इसलिए हमने अपनी सूची में जिन 6 राज्यों को शामिल किया है उन पर मोदी को नज़र रखनी पड़ेगी अगर वे 2019 के अपने आंकड़े को बेहतर करना चाहते हैं, और साथ ही साथ विपक्ष को भी इन पर कड़ी नज़र रखनी होगी अगर वो मोदी को 272 के आंकड़े से नीचे रखना चाहते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नेशनल इंटरेस्ट के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।